ओम शांति। काशी के तीन प्रकांड पंडित अपनी शिक्षा पूरी कर अपने घर लौट रहे थे। रास्ते में एक जंगल आया। रात जंगल में बिताई। बरसात का मौसम था। सुबह वो तीनों उठे। कई दिनों की लंबी यात्रा थी। थक भी गए थे और सोए थे, और जब उठे तो बहुत भूख लग गई तीनों को। उसमें से एक जो होता है वो वनस्पति शास्त्री होता है, बॉटनिस्ट। तो सब लोग, बाकी दो लोग उसको कहते हैं कि वनस्पतियों का ज्ञान तुम्हारे पास बहुत है, ऐसा करो कि बाजार से तुम ही जाकर सब्जियां लेकर आओ। उसमें से दूसरा जो होता है वो दार्शनिक होता है, फिलोसोफर। तो बाकी दो लोग कहते हैं हमेशा से तुमने दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों का अध्ययन किया है और एक प्रश्न हमेशा से ही तुम्हारे मन में रहा है, कौन किसको धारण किए हुए, घी पात्र को धारण किए हुए है या पात्र घी को धारण किए हुए है। तो अच्छा होगा कि तुम घी लेकर आओ। उसमें से तीसरा जो होता है वो शब्द शास्त्री होता है, लिंग्विस्ट, भाषा शास्त्री, ध्वनि शास्त्री, भाषा का ज्ञाता, ध्वनि का ज्ञाता, साउंड का साइंटिस्ट। तो वो लोग कहते हैं कि हम लोग दोनों जाते हैं, तुम यहां पर चूल्हा जलाओ क्योंकि उसमें से आवाज आएगी बुद्ध बुद्ध, तो उस आवाज के विषय में तुम्हारा ज्ञान प्रखर है। तो तीनों को बहुत जोर से भूख लगी है। तीनों ही बहुत विद्वान हैं और तीनों ही बहुत ज्ञानी हैं। तो पहला जो वनस्पति शास्त्री होता है वो बाजार जाता है और बहुत सारी सब्जियां देखता है, परंतु हर सब्जी में उसे दोष दिखाई देता है, कहीं वात, कहीं पित्त, कहीं कफ, कहीं कुछ तो कहीं कुछ, क्योंकि उसके शास्त्रों के अनुसार किसी ना किसी हर सब्जी में कोई ना कोई दोष है। और अंततः उसे नीम के कड़वे पत्ते मिलते हैं और वो कहता है हाँ ये सबसे अच्छी सब्जी है क्योंकि ये दोष रहित है और इसमें कोई दोष नहीं, इसकी सब्जी अच्छी बन सकती है। तो वो नीम के कड़वे पत्ते लेकर आता है, बाकी दो बहुत खुश होते हैं। दूसरा जो होता है पंडित वो दार्शनिक होता है। हमेशा से ही दर्शन शास्त्र में यह सिद्धांत विवादित रहा है, कौन किसको धारण किए हुए, घी पात्र को धारण किए हुए है या पात्र ने घी को धारण किया है। तो वो जाता है और घी लेके आता है और आते आते उसे लगता है क्यों ना आज प्रयोग कर लिया जाए, प्रत्यक्ष डायरेक्ट। उसके पात्र में घी है, प्रश्न है कौन किसको धारण किए हुए है। तो वो घी को, पात्र को उलट देता है, घी नीचे गिर जाता है और उसे बहुत खुशी होती है कि आज पता चल गया, जन्म जन्म का जो विवाद था उसका उत्तर आज मिल गया कि पात्र ही घी को धारण किए हुए है, घी पात्र को धारण किए हुए नहीं है। और वो खाली पात्र लिए आता है और बहुत खुश होता है, इतना बड़ा सिद्धांत आज उसे पता चल गया। तीसरा जो होता है वो भाषा शास्त्री होता है, शब्द शास्त्री होता है, लिंग्विस्ट। वो चूल्हा जलाता है, एक हंडी रखता है, पानी गर्म करता है, बरसात का मौसम, सूखी लकड़ियां जलती है तो आवाज आता है, खुदबुद खुदबुद। उसने सुना था और उसके शास्त्रों में लिखा था आवाज जो आना चाहिए वो आना चाहिए बुदबुद और बुदबुद, पर आवाज जो आ रहा है वो खुदबुद और खुदबुद। वो अपने शास्त्र खोलता है और देखता है कि ऐसा किसी आवाज का वर्णन है और पाता है कि ऐसे किसी आवाज का वर्णन नहीं है। और यहां तक शास्त्रों में यह लिखा है अगर कोई अशब्द सुनो अपशब्द सुनो तो तुरंत उससे दूर चले जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे शब्द वर्जित है, सुनना ही नहीं चाहिए जो शास्त्रों में है नहीं। तो वो एक लकड़ी लेता है और जोर से उस हंडी को मारता है और उसका पानी बह जाता है और उसका पानी उस आग में पड़ता है और वो आग बुझ जाती है। तो तीनों ही महाप्रकांड पंडित और जिनको बहुत भूख लगी थी और वो चाहते थे कि भोजन बनाए, अंततः भूखे ही रह जाते हैं। शब्द बहुत सुने, ज्ञान बहुत सुना, ज्ञान बहुत कंठस्थ किया, ज्ञान को बहुत रटा, परंतु व्यवहारिक जीवन में उस ज्ञान को लगा ना सके। वह प्रकाश अब भी अंदर नहीं था, भीतर कोई एक अज्ञात अंधकार था। सब कुछ पढ़ने के बाद और सब कुछ जानने के बाद और खुद को ज्ञानी समझने के बाद भी अंधकार अंदर विद्यमान था। चेतना अंदर से फिर भी सोई थी। क्या ऐसी सोई हुई चेतना को जगाया जा सकता है कि जिससे जो हमने पढ़ा और जो हमने सुना और जो हमारी समझ है उस समझ से उस ज्ञान से हम अंतर जगत को आलोकित कर सके और जीवन को प्रकाशित कर सके और दूसरों को उस दिव्यालोक से भर सके और इस संसार को पुनः ज्योतिर्मयी बना सके। शायद अंदर कोई सोया है, उस सोए हुए को जगाना, उस सोए हुए व्यक्ति को फिर से उठाना इस जीवन का लक्ष्य है। एक नींद है अज्ञान की नींद, जिससे हमें लगता है यहां जितने बैठे हैं सभी जाग गए हैं, परंतु जागने के बाद भी एक दूसरी भी निद्रा है जिसमें बहुतांश ब्राह्मण अब भी सोए हैं। वो कौन सी निद्रा है जिसमें बहुत से ब्राह्मण अब भी सोए हैं? वो कौन सी तंद्रा है जिससे अब भी जागरण हुआ नहीं है? शास्त्रों में गायन है, तीनों भाइयों ने तपस्या की, रावण ने, ब्रह्मा प्रसन्न हुए, कहा मुझे अमरता का वरदान दो, ब्रह्मा ने कहा नॉट अलाउड, कुछ और। तो उसने कहा मनुष्य छोड़कर कोई भी दूसरा मुझे मार ना सके, मनुष्य तुच्छ है, ऐसा समझना समझा बहुत बड़ी गलती थी उसकी। दानव, राक्षस, यक्ष, असुर, नाग, गरुड़ कोई भी मार सके पर मनुष्य न मारे। दूसरा भाई विभीषण, उसने कहा कि जब विपत्ति का समय हो तो मेरी बुद्धि स्थिर रहे और मैं धर्म का अनुपालन करूं। तथास्तु। और तीसरा भाई था कुंभकर्ण, उसकी आंख इंद्र के सिंहासन पर थी और वो इंद्रासन मांगना चाहता था, परंतु टाइमली इंटरवेंशन, सामयिक हस्तक्षेप सरस्वती के द्वारा, और उसकी जिह्वा के अंदर प्रतिष्ठित हो गई और इंद्रासन की जगह क्या मांग लिया, निद्रासन मांग लिया। दुख हुआ रावण को, कहा कि कुछ करो, ब्रह्मा ने कहा 6 मास सोएगा, 1 दिन जागेगा, फिर सो जाएगा। किसी वरिष्ठ बहन ने अपनी छोटी बहनों को एक चित्र दिखाया और पूछा कि ये चित्र देखो क्या दिखाई दे रहा है। छोटी ब्रह्मा कुमारी बहनों ने देखी, देखा और कहा इसमें क्या देखना है, एक कुंभकर्ण है सोया है और एक ब्रह्मा कुमारी कान में ज्ञान अमृत डाल रही है और दूसरे कान से अमृत बाहर निकल रहा है। ये चित्र तो हमने रोज देखा है और हम ये रोज समझाते भी है। बड़ी बहन ने कहा ध्यान से देखो, ये विशेष चित्र बना हुआ है, कुंभकर्ण को बैच लगा हुआ है, जो सोया पड़ा है शायद वह ब्राह्मण ही है। तो कौन सी वो नींद है जिससे हमें जागना है और कौन सी वो विधि है जिससे चेतना के अंदर जो कुंभकर्ण सो रहा है, जो नींद चल रही है, उससे जगाया जाए। ऐसी हम 7 विधियां देखेंगे जिससे इस कुंभकर्ण को हम जगाए। उससे पहले नींद कौन सी है, जिस नींद में ब्राह्मण ही सो रहे हैं। समय तीव्र पुरुषार्थ का है, समय करवट बदल रहा है, पाठ आत्माओं के तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं। ऐसे समय में क्या हम जाग रहे हैं या सो रहे हैं, यह बहुत बड़ा प्रश्न है। वो कौन कौन सी नींद है इसकी ज्यादा चर्चा हम नहीं करेंगे, जागना कैसे इसकी चर्चा ज्यादा करेंगे। एक नींद है आलस की, करना बहुत है परंतु आदत पड़ी है आलस्य की, आदत पड़ी है ऐशो आराम की, आदत पड़ी है सुख सुविधाओं की और सुख सुविधाओं ने आत्मा को कम तपस्वी बना दिया है। क्या मैं आलस की निद्रा में सोया तो नहीं। उससे भी सूक्ष्म दूसरी है अलबेलेपन की निद्रा, पता सब है, आलस भी नहीं है परंतु मन केयरलेस है। अलबेला बन गया है। क्यों बना है, क्योंकि सब बने हैं, क्योंकि दूसरे भी ऐसा कर रहे हैं। तीसरा है विस्मृति की निद्रा। स्मृति तो कभी विस्मृति, कभी याद रहता है कभी भूल जाता है। सुबह का वरदान निरंतर याद करो, मैं महान आत्मा हूं, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, मैं देव आत्मा हूं, मैं विशेष पाठधारी हूं, मैं कोटों में कोई हूं। याद करो तो फ्लू की बीमारी नहीं लगेगी, अशुद्ध फीलिंग्स नहीं आएंगे, शुद्ध फीलिंग में रहेंगे, वरदान सहज मिलेंगे, वरदानों से चलेंगे सफलता मिलेगी। नहीं तो अशुद्ध फीलिंग में मेहनत है, परंतु विस्मित है चेतना। मैं कौन। लास्ट संडे भी कहा था बाबा ने, एक ही पहेली है, एक ही प्रश्न है, एक ही स्मृति अमृत वेले लाना है, मैं कौन तो समर्थ बन जाएंगे। मैं कौन यह सदर्शन चक्र, तो बाकी सारे चक्र समाप्त हो जाएंगे। तो तीसरी नींद है विस्मृति की निद्रा, स्वयं को जगाना है। हे आत्मन जाग, जाग मछिंदर गोरख आया। गुरु ही मोहमाया में कामपुर में फंस चुका है, शिष्य आया है जगाने। जाग मछिंदर गोरख आया। चौथी गफलत की निद्रा, एक गलती और दूसरी गलती और गलती पर गलती हुए जा रही है और हम कुछ नहीं कर पा रहे, और हम देख रहे हैं और हाथ में केवल पश्चाताप, हाथ में केवल संताप, हाथ में केवल आंसू। किसी एक अव्यक्त वाणी में भगवान ने तीव्र पुरुषार्थ की परिभाषा दी है, तीव्र पुरुषार्थ अर्थात जो गलती एक बार की है उसे दोबारा न करना। एक बार धोखा हुआ फिर से धोखा खाना, एक बार किसी में फंस गए अब दूसरे में फंस रहे, पहले से वैराग, परंतु दूसरे में आ सकती आशा अब भी है कि दूसरा सुख देगा, पहले ने दुख दिया था। होपिंग अगेंस्ट होप की प्रक्रिया जारी है। क्यों नहीं मनुष्य जान पाता कि देहधारी कभी भी वो नहीं दे सकते जो भगवान दे सकता है। गफलत की नींद, बार बार गलतियां करना, बार बार श्रीमत का उल्लंघन करना, श्रीमत तोड़ना और फिर कहना मुझे नहीं पता था। इग्नोरेंस ऑफ लॉ एक्सक्यूजेस नन। गलत साइड से जा रहा है और पुलिस पकड़ ले और हमको, हम कहें मुझे तो पता ही नहीं था, मैं नया हूं, तो कहेगा रे तुम नए थे, जाओ जाओ, ऐसा कहेगा? काम की निद्रा, यहां सब दुर्योधन और सब दुशासन है। सुबह की मुरली, लाज राखो गिरधारी। मेरा पवित्र रही, लोक लाज की परवाह नहीं की। कल की वाणी, तुम ज्ञान मेरा आए हो, क्या काम का सूक्ष्म नशा तो नहीं जिसमें चेतना सोई है, और जिसे मैं प्रेम कह रहा हूं और जिसे मैं सेवा का संबंध कह रहा हूं, कहीं वो काम का ही कोई सूक्ष्म रूप तो नहीं। काम की निद्रा, धन की निद्रा, धन की आवश्यकता है सेवाओं में, पर जहां पवित्रता श्रेष्ठ है धन चरणों में आके गिरेगा। जहां फ्राक दिल है चेतना वहां सब मिल जाएगा। जहां आत्माओं की मां बनकर पालना दे रही है आत्मा, निमित्त के चरणों में सारा वैभव स्वतः ही आके गिरेगा। फैमिलियरिटी की निद्रा, फ्रेंडशिप की निद्रा, दोस्ती ही बना रखी है, घनिष्ठता, इंटीमेसी, सब कुछ एक व्यक्ति के साथ शेयर किया जा रहा है, मन के गहरे भाव होने वाली घटनाएं, उठने वाली भावनाएं, दमित इच्छाएं, किसी एक को साथी बनाया है और उसके साथ ही सब कुछ साझा किया जा रहा है। जहां शेयरिंग इधर ज्यादा, ऊपर शेयरिंग कम, सीधा हिसाब है। देहधारियों को जितना बताएंगे, भगवान को बताना कम हो जाएगा। उससे जो टॉक, उससे जो वार्तालाप, उससे जो रुरुयान कम हो जाएगी। खान पान की निद्रा, जीवन तापसी हो, भोग नहीं। नेक्स्ट संडे की मुरली, विषय भोग अर्थात विष के भोग। देह की संभाल करना, उसे स्वस्थ रखना, परंतु भोगों में डुबो न देना। इतना उसे भर न देना कि तपस्या असंभव हो जाए, इतना उसे भर न देना कि लालायित हो चेतना और जीभ। और वही चाहिए, और वो ना मिले तो बेचैनी। कहीं इस निद्रा में तो मैं सोया नहीं। नाम मान शान की निद्रा, हमारा भी नाम हो, हमने भी ये किया, हम भी कुछ है। इस सब ने एक छोटी सी कहानी लिखी है, जैसे भारत में पंचतंत्र है, वैसे उन पश्चिम जगत में इसब की कहानियां है और लुकमान की कहानियां है। एक मक्खी भिनभिनाती हुई हाथी के पीठ पर आकर बैठती है और हाथी से कहती है, अगर मेरा भार हो तो बता देना। हाथी सुनता ही नहीं, हाथी को सुनाई नहीं आया कुछ, और वो जाती रहती है। बीच में पुल आता है, फिर से मक्खी कहती है, अगर देख लो, कहो तो उड़ जाऊं, मेरे पास पंख है, कहीं पुल टूट ना जाए मेरे भार से। हाथी सुनता ही नहीं, हाथी को पता ही नहीं कोई उसके पीठ पर आकर बैठा है। तीर्थ यात्रा पूरी होती है, मक्खी विदा लेती है, कहती है मैं चलती हूं, धन्यवाद तुम्हारा। तब हाथी को थोड़ा थोड़ा सुनाई आता है, कौन है? और वो कहता है, तुम कौन हो, तुम कब आके बैठी, और मुझे तो पता ही नहीं, और तुम कब उड़ गई। तब तक मक्खी तो विदा हो चुकी है। इस सब ने कहा है, मनुष्य भी ऐसा ही है, सोचता है मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं याऊं हूं त्यों हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, पर संपूर्ण अस्तित्व में देखो तो तुम कहां हो। विशाल यज्ञ में हम ये सोचे कि मैं ये भी करता हूं, मैं वो भी करता हूं, और मैंने ये किया और मैंने वो किया, और मेरा नाम हो। यहां जो हो रहा है परमात्मा शक्तियों के द्वारा हो रहा है। हम ये सोचना कि मैं बहुत ऐसा हूं, अहंकार को जन्म देगा। सब कुछ उसकी शक्तियों के द्वारा हो रहा है। हमारा कुछ कहना उसी मक्खी की तरह है, जो सोचती है कि मेरा बहुत वजन है और मैं बहुत भारी हूं, और वो ये कहना कहलवाना चाहती है कि दूसरों से कि तुम भी हो, तुम्हारा भी अस्तित्व है। नाम मान शान की निद्रा, डिजिटल स्लीप, डिजिटल निद्रा, सेवा का साधन क्या मिला, साधन ही बंधन बन गया, ऐसी हमारी स्थिति ना हो और सारा समय उसी में हम डूबे रहे। सारे साधन मीडिया के, जब तक उनका उपयोग ज्ञान योग और सेवा के लिए तब तक ठीक, जब तक और जब उनका उपयोग चीप एंटरटेनमेंट के लिए होने लगे और हमको लगे कि हमें भी एंटरटेनमेंट चाहिए, और जब उनका उपयोग व्यर्थ के लिए होने लगे और जब उनका उपयोग फैमिलियरिटी बढ़ाने के लिए होने लगे और जब उनका उपयोग टाइम वेस्ट कर रहा हो, तब समझ लेना ये भी एक प्रगाढ़ निद्रा है, इलेक्ट्रॉनिक स्लीप, ये सारी नींद है। मैं किस नींद में हूं, पहले तो ये स्मरण कि मैं भी सो रहा हूं और मुझे जागना है, और मुझे कौन जगाएगा, मैं स्वयं। वो जो कुंभकर्ण था, जब निर्णायक युद्ध सामने था और रावण हारने लगा था, तब कुंभकर्ण को जगाने की प्रक्रिया चालू हुई। तो आज हम देखेंगे इस कुंभकर्ण को कैसे जगाए। सात विधियां है जिससे एक सोया हुआ व्यक्ति जागता है। सबसे पहला ध्वनि, उसके कान में ढोल बजाए गए ताकि वो जागे। अगर इनमें से किसी एक निद्रा में भी हम सोए हैं, दस निद्राओं में से, और वो कुंभकर्ण यदि मैं ही हूं, तो ध्वनि की आवश्यकता है, ढोल की आवश्यकता है, नगाड़ों की आवश्यकता है, आवाज की आवश्यकता है, लाउड वॉइस साउंड। तो सबसे पहली विधि है ज्ञान का शंखनाद, ज्ञान के ढोल, ज्ञान का आवाज। ये मानना कि अभी बहुत कुछ जानना बाकी है, ये समझना कि बहुत सारी चीजों से अभी भी मैं ग्रस्त हूं, पकड़े हुए हैं, उनसे भागना नहीं है। अध्यात्म अर्थात भागना नहीं, वरन जागना। और जागेंगे ज्ञान से, और ज्ञान प्राप्त होगा मुरली से। तो सबसे पहले ज्ञान को लाना है, और ज्ञान को लाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है चिंतन। अपने चिंतन को प्रखर करना है। केवल मुरली सुनना, मुरली की पॉइंट्स लिखना, डायरी बंद करना, यहां तक वो सीमित ना हो, परंतु हर दिन की जो मुरली है उसमें से कुछ ऐसी चिंतन की पॉइंट्स निकालना है जिस पर हम सारा दिन मनन करते रहे। यही ज्ञान का चिंतन अंदर के सोए हुए उस कुंभकर्ण को जगाएगा। वो हमारी नींद कोई भी हो सकती है, विस्मृति की, डिजिटल, खान पान की, नाम की, विस्मृति की, गफलत की, आलस की, अलबेलेपन की, और शायद हमें ही नहीं पता कि हम भी सो रहे हैं, परंतु ज्ञान के ढोल इतने बजाते रहना कि अचानक एक दिन जागरण होगा। तो सोए हुए कुंभकर्ण को जगाने के लिए चाहिए ज्ञान का मनन, ज्ञान का चिंतन, ज्ञान का अध्ययन, ज्ञान का की चर्चा। आपस में ज्ञान की चर्चा करनी है कि आज की मुरली में बाबा ने ये क्या कह दिया, ऐसा क्यों कहा, इस पॉइंट का क्या राज है, क्यों ऐसा कह रहा है, कहां लिखा हुआ है। वो लोग कहते हैं कि शादी करोगे तो बीमार हो जाओगे, तो तुम उनसे कहो कि वो सन्यासी भी ब्रह्मचारी रहते हैं, वो बीमार पड़ते हैं क्या? ये मुरली का पॉइंट है, इसको यहां से उठाओ। ब्रह्मचर्य के विषय में संसार की क्या क्या धारणा है, ये चिंतन बिंदु है। एक बिंदु बाबा ने दिया है, ये करोगे तो बीमार पड़ जाओगे, ये संसार की मान्यता है। ऐसी और क्या क्या मान्यताएं हैं? और अगर वो इस तरह के प्रश्न पूछे तो हम उनका खंडन कैसे करें, यह चिंतन है। ऐसे रोज की मुरली से नए नए चिंतन बिंदु निकालने हैं। वो नारद ऐसा कोई बजाने वाला नहीं था, स्त्री पुरुष दोनों ही नारद। ये नारद कौन, किसे नारद भगवान कह रहा है? बंदर किसे कह रहा है? कहीं वो मैं तो नहीं? क्योंकि जिसमें पांच विकार वो बंदर। फिर से इस चिंतन बिंदु को यहां से उठाना है और बंदर क्या क्या करता है उसके विषय में सोचना है, और बंदर का स्वभाव कैसे होता है उस विषय में सोचना है, और फिर अपने स्वभाव को देखना है। भगवान उवाच, तुम ही हो क्या? हम बात कर रहे हैं चिंतन बिंदु को उठाने की, वहां से उठाना, फिर उसके विषय में सोचना। ज्ञान बरसात नहीं, ज्ञान पानी नहीं, ज्ञान अमृत नहीं, ऐसा क्यों कहा? सोचना, एक एक पॉइंट लेना, अलग से नोट करना, और सारे दिन भर इसमें बिजी रहना। और जो बुद्धि इन शुद्ध मुरली अर्थात शुद्ध फीलिंग इनमें बिजी रहती है, वहां फिर फ्लू की बीमारी नहीं होगी, वहां फिर उदासी डिप्रेशन लगाव झुकाव कुछ नहीं होगा। वहां हायर कॉन्शियसनेस में चेतना जिएगी, नीचे की बातें उसको प्रभावित नहीं करेगी, क्योंकि नीचे हलचल की दुनिया है, डिस्टर्बेंस के अंबार लगे हैं, काटे ही काटे हैं। उसमें हम सुरक्षित रहेंगे। ज्ञान कवच है कल की मुरली, उस कवच को धारण करके रहना है। तो कान में क्या गूंजे? कुंभकर्ण को जगाने के लिए ढोल बजाएगा उसके कानों में, परंतु वो नहीं जागा। अब नेक्स्ट विधि पर आते हैं। सोए हुए व्यक्ति को जगाने के लिए उसके चेहरे पर पानी फेंका जाता है। क्या किया जाता है? पानी, पहले छींटे, छींटों से ना जागे तो बकेट भर पानी डाल दो, जागना ही पड़ेगा। परमात्मा प्रेम का पानी, परमात्मा प्रेम का जल, प्रभु प्रेम के जल से स्वयं के जागे हुए कुंभकर्ण को जगाना है। आने वाले संडे सारी मुरली प्रेम पर है। ये परमात्मा प्रेम निस्वार्थ प्रेम है। ये परमात्मा प्रेम तुम्हें किसी भी देहधारी से नहीं मिल सकता। ये परमात्मा प्रेम ब्राह्मण जीवन का आधार है। ये परमात्मा प्रेम के बिना जीवन नीरस है, सूखा हुआ गन्ना। ये परमात्मा प्रेम नव जीवन का जीवदान है। ये परमात्मा प्रेम भगवान के समीप लाने वाला है। ये परमात्मा प्रेम परमात्मा सात का अनुभव कराने वाला है। ये परमात्मा प्रेम तुम्हें तीन बातों से छुड़ाने वाला है, देह का भान, देह के रिश्ते, देह के वस्तुओं का आकर्षण। ये परमात्मा प्रेम तुम्हें बाप समान बनाने वाला है। ये परमात्मा प्रेम समर्पण कराने वाला है। ये परमात्मा प्रेम दाता का प्रेम है। तुमने पाया क्या और तुमने छोड़ा क्या? जो छोड़ा, जो त्याग किया कौड़ी था, जो पाया वो विराट, जो भाग्य तुम्हें मिला। ये परमात्म प्रेम जो खोया हुआ राज्य है उसे दिलाने वाला है, ये परमात्म प्रेम तुम्हें डबल अधिकारी बनाने वाला है। तो परमात्म प्रेम से आत्मा को जगाना है, ये सोचना कि अभी हमारा बाबा से जितना प्यार है क्या मैं करूं जिससे ये प्यार बहुत बढ़ जाए, विराट हो जाए। क्योंकि जितना प्रेम बढ़ेगा उतना समर्पण बढ़ेगा, जितना प्रेम बढ़ेगा उतना उसके समीप का अनुभव होगा, वो साथी बनेगा। अभी वो दूर है, क्या करे, जो उसके सामीप्य का अनुभव अधिक से अधिक बढ़ जाए। छोटा सा बच्चा अपने पिता से पूछता है, भगवान कितना बड़ा है? पिता कहते वो देखो आकाश में हवाई जहाज उड़ रहा है उतना। तो बच्चा कहता इतना छोटा? तो उसके पिता उसको एयरपोर्ट में लेके जाते हैं, एयरपोर्ट हैंगर जहां पर फ्लाइट प्लेन्स रखे हुए होते हैं, और उसके बेटे को दिखाते एकदम समीप से, ये है एरोप्लेन। जितना तुम उसके समीप हो उतना वो बड़ा है, जितना तुम उससे दूर हो उतना वो छोटा है। मैं कहां हूं, समीप या दूर? उसके पास जाना है, उसके प्यार में डूबना है, अनुभव करना है। तीन प्रकार के बच्चे हैं, एक है प्रेम करने वाले, दूसरे है प्रेम निभाने वाले, और तीसरे है प्रेम स्वरूप होकर प्रेम में लीन होने वाले लवलीन बच्चे। मैं कौन सा हूं, प्यार करने वाला कि बाबा तुम हमारे दिल में हो, छाती फाड़ के दिखाऊं तो अंदर तुम ही बैठे हो? परंतु शायद परमात्मा प्रेम की परिभाषा हमने जो समझी है बहुत छोटी है। परमात्मा प्रेम अर्थात मुरली से प्रेम, परमात्मा प्रेम अर्थात यज्ञ से प्रेम, बाप से प्रेम अर्थात मधुबन से प्रेम, बाप से प्रेम अर्थात परिवार से प्रेम, बाप से प्रेम अर्थात राजयोग से प्रेम, बाप से प्रेम अर्थात श्रीमत से प्रेम, बाप से प्रेम अर्थात सेवा से प्रेम। सातों चीजें जिसमें हो तब कहेंगे कि हमारा भगवान से प्रेम है। प्रेम तो बहुत है परंतु मुरली में क्या था वो मत पूछना। प्रेम तो बहुत है परंतु ये परिवार के लोग खतरनाक है। पिछले संडे श्रेष्ठ परिवार का गायन किया था बाबा ने, इसी का यादगार गीता भागवत और तारामंडल है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने अपने एक अपनी जीवन कहानी में लिखा है, हे प्रभु मैं तुझे स्वीकार करता हूं परंतु ये तेरा संसार मुझे अस्वीकार है। ये पहले लिखा था, फिर थोड़ा बूढ़ा हुआ और बुढ़ापे में उसको समझ में आया और उसने अपने वक्तव्य को बदला और उसने लिखा कि यदि मैं उसको स्वीकार करता हूं तो उसका परिवार यदि मैं स्वीकार करता हूं अस्वीकार करता हूं इसका मतलब मैं उसे भी अस्वीकार करता हूं। उससे प्यार अर्थात उसके परिवार से भी प्यार, उसकी दुनिया से भी प्यार, उसका ये जो ब्राह्मण प्रभु परिवार है इससे भी प्यार। तो स्वयं को किससे जगाएंगे, किस पानी से, किस जल से, किस छीटों से? परमात्मा प्रेम के छीटे। और अपने बाजू वाला यदि सोया हुआ हो तो उसे भी जगा देना। कैसे जगाएंगे, उस पर भी बौछार कर देना प्रभु प्रेम की, ऐसा प्रेम हमें हमारा प्रेम देखकर उसके हृदय में प्रेम उत्पन्न हो जाए, इतना हम उससे प्यार करें। उससे उसको कुछ नहीं कह रहे दूसरे को, परंतु हमारा उसके प्रति ऐसा समर्पण और ऐसा प्रेम हो, उसकी वाणी के प्रति, उसके बोल के प्रति, उसके यज्ञ के प्रति, उसके परिवार के प्रति, उसके श्रीमत के प्रति, उसके ज्ञान के प्रति, उसकी सेवा के प्रति, उसके सिखाए हुए राजयोग के प्रति, उसकी दी हुई धारणाओं के प्रति, उसकी सिखाई हुई पवित्रता के प्रति, कि ऐसी धारणाएं और ऐसी पवित्रता देखकर उसके हृदय में भी परमात्मा प्रेम का अंकुर फूटे, परमात्मा प्रेम का वृक्ष जन्मे, पल्लवित हो, अंकुरित हो, पल्लवित हो, वट वृक्ष बन जाए, जिसकी छाया में संसार विश्राम करे। ये दूसरा, फिर भी नहीं जागा कुंभकर्ण क्योंकि निद्रा बहुत सघन है। तीसरा, प्रकाश। कोई सोया है, कमरे में अंधकार है, तो क्या किया जाता है, कर्टन को हटाया जाता है ताकि सूर्य का प्रकाश और सूर्य की किरणें उसके चेहरे पर आए, उसे पता चले कि अरे भाई समय क्या हुआ है। समझ का प्रकाश, कौन सा प्रकाश, समझ का, ज्ञान की ध्वनि कहा प्रकाश, समझ, आज सुबह की साकार मुरली। जब तुम ब्राह्मण बनते हो और ज्ञान को समझते हो तब देवता बनते हो, जब तुम ब्राह्मण बनते और ज्ञान को समझते हो, कितना हमने समझा है, तो सभी स्थिर बैठेंगे। पांच संकल्प दे रहे हैं वरदान से, मैं महान आत्मा हूं, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, मैं विशेष पाठधारी हूं, मैं देव आत्मा हूं, मैं कोटों में कोई आत्मा हूं, इस शुद्ध फीलिंग में स्थित हो जाना संपूर्ण समझ के साथ। अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना है, जीवन के प्रति अंडरस्टैंडिंग, संबंधों के प्रति अंडरस्टैंडिंग, अपने ही मन के विचारों की अंडरस्टैंडिंग, अपने ही संस्कारों की समझ, अपने ही आदतों की समझ, वो आदत कैसे बनी, कहां से बनी और ये क्यों हो रहा है। नहीं तो हमारी स्थिति उन तीन पंडितों की तरह होगी। ज्ञान तो बहुत था परंतु समझ नहीं थी, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मिसिंग था। इस अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना है और उसके लिए दो चीजों की आवश्यकता है, मौन और एकांत। बिना मौन के और बिना एकांत के समझ नहीं बढ़ सकती। जितना जितना जीवन में जो घटनाएं हो रही है, व्यक्ति शाम को या सुबह कुछ समय एकांत में जाकर उन घटनाओं का चिंतन नहीं करता और ये नहीं सोचता कि किस तरह से ज्ञान को इन परिस्थितियों में प्रयोग किया जाए, क्योंकि परिस्थितियां बहुत बिकट है, प्रतिकूल है, अनएक्सपेक्टेड है। क्या ऐसी परिस्थिति में भी इस ज्ञान को अप्लाई किया जा सकता है? इस विषय में सोचना, उस मौन में उतरकर, उस एकांत में उतरकर उत्तर आएगा। तो ये जो समझ है, ये जो अंडरस्टैंडिंग है, अंडरस्टैंडिंग इज मोर पावरफुल देन नॉलेज। मुरलियों में आता है समझा समझा समझा, जैसे छोटे बच्चे को समझाया जाता है, मन को छोटा बच्चा समझना और उसे समझाना कि सुन, ये सही, ये राइट, ये रॉन्ग, ये सत्य, ये असत्य, ये सार, ये असार, तुझे क्या करना, ये श्रीमत, ये मनमत, ये परमत, इन तीनों को छांटना है जीवन में, श्रीमत, मनमत, परमत। जो मैं कर रहा हूं ये क्या है तीनों में से? मेरे ही अपने मन का प्रक्षेपण, या फिर श्रीमत, या मॉडिफाइड श्रीमत, या कन्वीनियंट श्रीमत, सुविधाजनक श्रीमत, अपनी सुख सुविधाओं के अनुसार श्रीमत को तोड़ मड़ोड़ के अपने फायदे के लिए प्रयोग करना। श्रीमत क्या है? तो समझ का क्या? प्रकाश। चौथा, रावण अभी जाग सो रहा है, कुंभकर्ण। रावण तो सो ही रहा है, वो अलग चीज है, रावण की निद्रा अलग, कुंभकर्ण अब भी सो रहा है। वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है कि 100 हाथी को उसके शरीर से दौड़ाए गए, उसके बाद में वो जागा, भाले चुभाए गए, अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया गया, पर वो इतना विशाल काय था कि उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो ये जो चुभाना है, ये जो चोट है, ये चौथी विधि है इस रावण, इस कुंभकर्ण को जगाने की, वैराग की चोटे, वैराग का भेदन, वैराग से भेदना, अपने ही मन को समझाओ। किसी चीज से भागना नहीं है, क्योंकि व्यक्ति जिससे भागने का प्रयत्न करता है उसमें और आसक्ति हो जाती है उसकी, और वो रसपूर्ण हो जाता है। ये चीज से भागना है, भागना नहीं जागना, उसकी व्यर्थता को समझना। एक व्यक्ति है जो टीवी में किसी एक सीरियल या प्रोग्राम में चिपका हुआ है, उदाहरण, ज्ञान सब चल रहा है पर वो सीरियल भी साथ साथ चल रहा है, और वो एक आदत भी साथ साथ चल रही है। जब तक वो ये ना जान ले ये व्यर्थ है, तब तक उससे मुक्त नहीं होगा। वस्तुओं की, चीजों की, व्यक्तियों की व्यर्थता को जान लेना वैराग है, रियल वैराग। जहां पर चीजें व्यर्थ हो जाए, हमारा वैराग ऐसा हो जैसे झाड़ उसमें सूखी हुई पत्तियां स्वतः ही गिर जाए, सहज वैराग। इस संसार की कोई भी चीज आकर्षित ना करे। नेक्स्ट संडे की मुरली, यहां जो भी मित्र है वो कब दुश्मन बन जाए पता नहीं, एक परमात्मा प्रेम ही ऐसा है जिसमें प्रेम का संबंध है और बाबा देता ही रहता है, वो लोग तो मांगते रहते हैं, कब धोखा देंगे, कब कुछ करेंगे। जब वस्तुओं की, चीजों की, व्यक्तियों की और संबंधों की व्यर्थता का पता चल जाए, अपने आप छूट जाएगी, फिर सोचना नहीं पड़ेगा कि मुझे इसको छोड़ना है, मुझे इसको छोड़ना है, ये आदत अच्छी नहीं है, ये संस्कार अच्छा नहीं है, ये वस्तु, ये व्यक्ति, ये संबंध, उनकी जो पकड़ है वो ढीली हो जाएगी। ये भोग, ये खाना मेरे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं, वैराग लाना है। वैराग से की चोटें जब तक नहीं पड़ती, कितने सारे सैनिक और सिपाही उस कुंभकर्ण को जगाने के लिए चले गए थे, कोई इधर से छुपा रहा है, कोई उधर से छुपा रहा है, कोई कान को छुपा रहा है, कोई नाक में डाल रहा है। तो चेतना के अंदर जो कुंभकर्ण सोया है किसी एक निद्रा में, उसको वैराग से जगाना है। केवल ये कहकर वैराग नहीं आता है कि संसार विनाश हो जाएगा, असार है, चिंतन, सोचना, मेरा क्या क्या नुकसान हो रहा है इस एक भोग की वजह से, इस एक आसक्ति की वजह से, गहन चिंतन और उससे मुक्त हो जाना। संन्यास अर्थात दमन नहीं, मुक्ति हमारा बेहद का है, मुक्त हो जाना। अब उसका कोई अस्तित्व ही नहीं हमारे लिए, ऐसी अवस्था। परंतु कुंभकर्ण अब भी जाग रहा है, अब भी सो रहा है, कैसे जगाए? अगला है उसको हिलाना डुलाना। क्या करना? उसको हिलाना डुलाना, सेवा से हिलाना डुलाना। आज सुबह की मुरली, मम्मा बाबा भी क्या करते थे? बर्तन मांजते थे, झाड़ू झाड़। सेवाओं में स्वयं को डुबा देना, ये विधि है अंदर के सोए हुए कुंभकर्ण को जगाने की। इतना बिजी हो जाना सेवा में कि व्यर्थ के लिए टाइम ही ना हो, वो व्यर्थ का फ्लू ही हमको नहीं कैच करे। ज्ञान की सेवा, योग की सेवा, स्थूल सेवा, सूक्ष्म सेवा, विश्व सेवा, यज्ञ सेवा, मनसा सेवा, किसी ना किसी एक सेवा में जो ये सोचो कि आज तक मैंने कौन सी वो सेवा है जो नहीं की, ऐसी कौन सी सेवा रही हुई है जो हमने अब तक नहीं की, उसको ढूंढो। उसके लिए क्या योग्यताएं चाहिए, उसको जीवन में लाना। तो सेवा एक विधि है स्वयं को जगाने की। जो व्यक्ति सेवाओं में बिजी रहते हैं उनके पास माया कम आती है, और जो ये सोचते हमें केवल ज्ञान योग के लिए समय चाहिए, सेवाएं तो बाधाएं है, थोड़े समय ठीक चलेगा, बाद में बंधन बन जाएगा, बाद में व्यर्थ आएगा, कहां से प्रवेश करेगा पता भी नहीं चलेगा। सेवा एक बहुत सुंदर अस्त्र शस्त्र बाबा ने दिया है जिसमें हम स्वयं को बिजी रख सकते हैं। कितना योग लगाएगा बैठकर कोई, और हमें विश्व का भी तो कल्याण करना है। आज सुबह की मुरली, ज्ञान गंगाए हो बहो, घर घर में होगी एक दिन, ज्ञान की वर्षा करोगी, जगह जगह पर सेंटर होंगे, ये इतना बड़ा कार्य हमारे द्वारा होना है, तो हम एक जगह नहीं बैठ सकते। सेवाओं में बिजी कर देना स्वयं को। तो सेवा अर्थात हिलना, रावण हो कुंभकर्ण को इधर डुलाया गया, इधर हिलाया गया, किससे? सेवा से। परंतु वो अब भी सो रहा है। अब क्या करें आप बताओ? एक चीज बाकी है करना, सुगंध। वो कुंभकर्ण भी कैसे जागा था? सुगंध से, पवित्रता की सुगंध, पवित्रता की फ्रेग्रेंस, इस सुगंध को बढ़ाना है। जितनी जितनी प्यूरिटी बढ़ती जाएगी, आप ही सारे कार्य सहज होंगे, सारी सेवाएं सहज होंगी, सारी धारणाएं सहज होंगी, सारे संबंध जो गड़बड़ चल रहे हैं ठीक ठाक होने लगेंगे। क्योंकि संबंध को बिगाड़ा है अपवित्रता ने। अगर हम सूक्ष्म में सारे संबंधों की स्टडी करें तो जब जब उसमें देहभान आया है, एक्सपेक्टेशंस बढ़ी है, सूक्ष्म कामनाएं जागी है और हम नीचे गिरे हैं, इसके लिए प्यूरिटी की फ्रैग्रेंस, इस फ्रैग्रेंस से ही आत्मा जागेगी और वो जो अंदर अंधकार है, वो जो घोर निद्रा में सोई हुई चेतना है, वो जागृत अवस्था को प्राप्त करेगी। तो क्या चाहिए? प्यूरिटी। मधुबन में आप सब आए हैं, यहां पर हर एक अपने आप से और बाबा से अपनी प्यूरिटी की प्रतिज्ञा को रिवाइज करना है। और यहां से आज तक जो हुआ वो हुआ, पर आज से मनसा वाचा कर्मणा दृष्टि वृत्ति कृति संपूर्ण पवित्रता का पालन करेंगे, ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा कर जाना है। जरा भी इस सब्जेक्ट में कमी ना हो, क्योंकि ये प्रथम सब्जेक्ट है, जरा भी इसमें हलचल ना हो। तो इस कुंभकर्ण को जगाने के लिए कौन कौन सी चीजें चाहिए? सबसे पहला आवाज, दूसरा पानी, तीसरा प्रकाश, चौथा भेदना, पांचवा हिलाना डुलाना, छठवा सुगंध, और सातवा और क्या किया जाता है जगाने के लिए? सुगंध हो गया। सोया हुआ एक व्यक्ति है, उसको जगाना है तो क्या करेंगे? हिला दिया, चुबाया, पानी डाला, प्रकाश डाला, सुगंध दी, और क्या करेंगे? धक्का। क्या चाहिए? सातवां नंबर धक्का चाहिए, जबरदस्त स्मृति का धक्का। उसे स्मृति दिलाना, तब धक्का लगे उसे, अरे तुम कौन हो और क्या कर रहे हो? श्रेष्ठ ब्राह्मण बने और श्रेष्ठ परिवार में आए और ये तुम्हारे कर्म? लज्जा आनी चाहिए अपने आप से ऐसे बात करना कि मैं ये हूं और ये कर रहा हूं। अपने आप को ही जगाना, अपने आप को ही जबरदस्त धक्का देना, ऐसा धक्का कि जिससे हम जागे, ऐसी भाषा में स्वयं से बात करना, कठोर से कठोर। बाप की निंदा करोगे, वो स्वयं सोचे हर एक कि कैसे मुझे अपने आप को जगाना है। लास्ट में एक बात बताएंगे, एक सम्राट को यह पता चला कि महात्मा बुद्ध का आगमन हुआ है। उसे यह था कि मेरी ख्याति भी थोड़ी हो जाए और मैं इनको भी कुछ दे दूं, तो वो एक बहुमूल्य हीरा लेके जाता है अपने साथ, एक ऐसा हीरा कि उसको लगता है ये हीरा मैं यदि महात्मा बुद्ध को दूंगा तो सब जगह मेरा नाम फैल जाएगा कि इतना बहुमूल्य हीरा इसने महात्मा बुद्ध को दिया। ये भी इच्छा है, बुद्ध थोड़ा कम महत्वपूर्ण है, ये देना जहां था महत्वपूर्ण था, परंतु उसके मन में यह भी था कि महात्मा बुद्ध शायद ये हीरे को न ले तो एक दूसरे हाथ में कमल का फूल लेके गया। तो दोनों लेकर वो पहुंचा और उसने पहले हीरा दिखाया, बहुमूल्य हीरा। महात्मा बुद्ध ने कहा इसको गिरा दो, उसने गिरा दिया। फिर उसने दूसरे हाथ में कमल का फूल, वो फूल भी बेमौसम का फूल था, बहुमूल्य फूल, ऐसा साधारण नहीं था, वो दिया। महात्मा बुद्ध ने कहा इसको भी गिरा दो, उसे आश्चर्य लगा, दोनों हाथ थे खाली, महात्मा बुद्ध ने कहा अब इनको भी गिरा दो। तब तक उसे समझ नहीं आ रहा था गिराना किसको है, ये हाथ में तो कुछ भी नहीं। और अचानक एक रोशनी सी कौंध गई और उसको समझ में आया अहंकार की बात हो रही है, उस अंधकार की बात हो रही है, उस सोई हुई चेतना की बात हो रही है। और उसको एकदम से प्रकाश जैसे उसके हृदय में आ जाता है और उसको समझ में आता है, वो चरणों में गिर पड़ता है, क्योंकि वो जो बात कर रहे हैं उस मैं उस अहंकार की बात कर रहे हैं, वो जो सोया हुआ व्यक्ति था सामने अचानक समझ आ गई, अचानक प्रकाश आया, अचानक पानी गिर गया, अचानक किसी ने भेद दिया, अचानक सुगंध आ गई, अचानक धक्का लग गया, सारी चीजें हो गई और वो जाग गया और वो जागरण में आया। तब उसको पता चला मैं ये सब क्या कर रहा था। तो स्वयं को ये सात चीजें, फिर से सबसे पहली बात, कौन सा प्रकाश, कौन सी ध्वनि, ज्ञान की ध्वनि। ज्ञान की ध्वनि अर्थात चिंतन मनन अध्ययन, रोज मुरली से तीन चार टॉपिक्स निकालना, उसके ऊपर सारे दिन भर चिंतन करना, टॉपिक्स निकालना है, पॉइंट्स बहुत लिख ली, अब टॉपिक्स निकालो और सारे दिन भर जब भी टाइम मिले उनके ऊपर सोचो ये क्यों कहा गया, लक्ष्य क्या, मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहा ऐसा, मर्यादाएं कौन सी है, एक एक पॉइंट पर चिंतन चालू हो जाए। ये गीत है, पूरा गीत पर ही मुरली है, कुछ कुछ हम कितने गीत सुनते हैं, कभी ऐसी मुरली अंदर गूंजती है, एक गीत होता है उस एक गीत पर पूरी मुरली होती है। तो सबसे पहला ज्ञान की ध्वनि, दूसरा परमात्मा प्रेम के छींटे, आपको काम दे रहे हैं परमात्मा प्रेम के क्या क्या फायदे हैं, जब भी समय मिला मिले तब इसके ऊपर लिखना परमात्मा प्रेम के क्या क्या फायदे। मनुष्य प्रेम और परमात्मा प्रेम की तुलना, इधर लिखो ईश्वरीय प्रेम, इधर लिखो मनुष्य का प्रेम, दोनों में क्या अंतर है, अपनी बुद्धि को चलाना है। दूसरा पानी, तीसरा प्रकाश, समझ का प्रकाश, अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना है, उसके लिए चर्चा करनी है दूसरों के साथ, ज्ञानी आत्माओं के साथ, जिनको इंटरेस्ट है ज्ञान और योग में, उनके साथ पूछना है कि ये क्या है वो क्या है, ऐसा क्यों कहा वैसा क्यों कहा, ब्रेनस्टॉर्मिंग जिसको कहा जाता है, तब कहीं जाकर ये समझ में आएगा, क्योंकि ये ज्ञान बहुत हाई लेवल का है, पीएचडी लेवल, इसके लिए स्टडी अंडरस्टैंडिंग भी बहुत ज्यादा चाहिए, ब्रेन बहुत शार्प चाहिए, बुद्धि तीक्ष्ण चाहिए, तो ये समझ में आएगा। चौथा वैराग्य की चोट, बैठना एकांत में और सोचना व्यर्थता के विषय में, नुकसान के विषय में, क्या ये संसार है और कैसा ये संसार है। कुछ दिन पहले बाबा ने कहा ये छींची शरीर है और छींची दुनिया है, दोनों से मुक्त हो जाओ। ये शरीर छींची क्यों है इसका चिंतन करना, क्या है इस शरीर में, कौन सा है सौंदर्य, कहां है सौंदर्य, क्यों भ्रमित करता है, क्यों पागल हो जाते हैं लोग इस देह के पीछे, क्यों वासनाओं को जन्म देता है, चिंतन। अगला पांचवा सेवा का क्या हिलना डुलना, यदि पांच मिनट भी 24 घंटे की दिनचर्या में हम खाली है, जहां कुछ नहीं कर रहे, हो सकता है उसी पांच मिनट में और 10 मिनट में माया आती है रोज, उस 10 मिनट को, वो रात को सोने से पहले भी हो सकते, दोपहर के 10 मिनट हो सकते, उसको सेवा से भर देना, सोचना इस समय मैं क्या चिंतन करूं, तो सेवाओं का हिलना डुलाना। नेक्स्ट पवित्रता की सुगंध से स्वयं को भरना है, दो तीन किताबें हैं, एक जगदीश भाई की किताब लिखी हुई है ब्रह्मचर्य, जिन्होंने नहीं पढ़ी वो ले ले और पढ़े, दूसरी किताब है यज्ञ में संपूर्ण पवित्रता, जिसमें बाबा के सब संकलन किए हुए शब्द है, स्पार्क में एक किताब है संपूर्ण पवित्रता की, वो ये तीन पवित्रता की किताबें हमारे पास उपलब्ध है। ब्रह्मचर्य को फिर से दृढ़ करना है, उसके लिए चिंतन ज्ञान समझ की आवश्यकता है। नेक्स्ट स्मृति का धक्का, स्मृति दिलानी है स्वयं को, याद दिलाना है मैं क्या हूं, मुझे क्या करना है, किस लिए मैं आया हूं, किस लिए ब्राह्मण बना, ब्राह्मण बनने के बाद भी हमारा जीवन यदि उन्हीं अज्ञानियों की तरह है तो किस लिए ब्राह्मण बने। स्वयं को स्मृति से धक्के देने हैं, तब जाकर ये जो निद्रासन में जो कुंभकर्ण है वो जागेगा और शायद हो सकता है उसे इंद्रासन प्राप्त हो, उसका वरदान उल्टा हो जाए। तो ऐसे स्वयं को सभी को जगाना है।